Bhagavatam class by His Grace Rukmini Krishna Prabhu on 3rd
September 2006. भागवत में कहा गया है कि जो आत्मा राम हैं वे प्रकृति के गुणों के समस्त दूषणों से मुक्त होते हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा विशेषतया रज तथा तमो गुण के द्वारा प्रभावित रहता है तब तक वह लालची तथा कामी बना रहता है। अतः वह कठिन परिश्रम से लगा रहकर अनिर्ष कार्य करता है। ऐसे अहंकार से वह एक योनि से दूसरी में घूमता रहता है और उसे किसी भी योनि में चैन नहीं मिलता। ज्ञानी इस तथ्य को जानता है अतः वह कार्य करना बंद करके कर्म संन्यास ग्रहण कर लेता है। किंतु यह वास्तविक संतोष का पद नहीं है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात ज्ञानी की भौतिक बुद्धि उसे भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने के लिए मार्ग दिखाती है। तब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों के ध्यान में मग्न रहने लगता है। अतः पितृ महाराज ने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने भक्ति पथ ग्रहण कर लिया है, उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। यदि मुक्ति ही अपने में अंत होती तो मुक्त व्यक्ति द्वारा भक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता ना पड़ती। दूसरे शब्दों में भगवान के चरण कमलों की भक्ति से प्राप्त होने वाला आनंद आत्म साक्षात्कार से प्राप्त आनंद अर्थात आत्मानंद से कहीं बढ़कर है। अतः पृथ्वी महाराज ने निश्चय किया कि वे केवल भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाएंगे। यही जीवन की परम सिद्धि है। ओम अज्ञान
हरे कृष्णा। तो आप सबका आज की सुबह की भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो ये अध्याय 20 जिसका नाम है महाराज पृथ्वी के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। तो आप सब जानते हैं जो प्रसंग चल रहा है, महाराज पृथ्वी के आदर्श व्यवहार से उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनके 100वें अश्वमेध यज्ञ में प्रकट हुए। यज्ञ करने का अर्थ है ऐसा कार्य जिसे विष्णु को प्रसन्न किया जाए। तो महाराजा पृथ्वी 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और इंद्र बार बार उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। और जब वो इंद्र को ध्वस्त करने लगे मंत्रों के द्वारा उनके यज्ञ में उपस्थित मुनिगण, तो तभी वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी महाराज जी को आज्ञा दी कि आप इंद्र को क्षमा करें। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके महाराज पृथ्वी ने इंद्र को क्षमा किया और फिर महाराजा पृथ्वी की इस विनम्रता को देखकर, उनकी सहनशीलता को देखकर, उनके आदर्श व्यवहार को देखकर स्वयं भगवान वहां पर प्रकट हुए। जब भगवान वहां पे प्रकट हुए यज्ञ स्थल पर, तो पीछे वर्णन आता है कि महाराजा पृथ्वी के जो आंखें थी अश्रुओं से विवल हो गई, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और कुछ कह नहीं पा रहे थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रार्थना करने शुरू किया। और उन्होंने कहा कि हे भगवान, जो आप तो सबसे बड़े वरदान देने वाले हैं, तो अगर आपसे कोई भौतिक सुख मांगेगा तो ये मूर्खता है, क्योंकि भौतिक सुख तो प्रकृति के 3 गुणों से प्राप्त हो ही जाते हैं और वैसे आप कैवल्यपति भी हैं, लेकिन मुझे आपसे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ना भक्ति चाहिए ना मुक्ति चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि आप मुझे लाखों काम दे दें जिससे कि आपके लीलाओं का, आपका गुणगान मैं आपके शुद्ध भक्तों द्वारा सुन सकूं। ये सबसे उत्तम आशीर्वाद है। कल्पना कीजिए, सामने भगवान खड़े हैं और उनको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि वो कुछ भी आशीर्वाद मांग सकते हैं। तो ये आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मैं आपके शुद्ध भक्तों द्वारा आपका गुणगान सुन सकूं, और इसके लिए मुझे 2 कान पर्याप्त नहीं लग रहे, लाखों कान चाहिए, क्योंकि आपके अनंत गुण है। तो ये पृथ्वी महाराज हम सबको सिखा रहे हैं किस तरह से एक भक्त का भाव होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब आपके गुणगान सुनूंगा तो मुझे पुनर्स्मृति होगी, मुझे मालूम चलेगा कि मेरा और आपका क्या संबंध है। तो जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान का गुणगान सुनते हैं तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, हमारा मोह नष्ट होता है और हमें स्मृति प्राप्त होती है कि मैं भगवान का अंश हूं, ये भौतिक जगत मेरे लिए नहीं है। और फिर कहा कि आपका गुणगान तो स्वयं लक्ष्मी जी सुनते हैं, स्वयं लक्ष्मी जी आतुर रहती हैं आपका गुणगान सुनने के लिए, और वही लक्ष्मी जी हमेशा आपका निरंतर आपका चरणों की सेवा करती हैं। तो पितु महाराज कह रहे हैं कि मैं भी आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, और कह रहे हैं कि जब मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगेगा और लक्ष्मी जी मुझ में स्पृधा होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आप दीन वत्सल हैं तो आप किसकी साइड लेंगे, मेरी साइड। उस दिन माखन कोमजी कह रहे थे दिस इज ट्रांसडेंटल एरोगेंस, एक दिव्य अभिमान है, भक्त को इतना विश्वास है कि लक्ष्मी जी को आप छोड़ देंगे और आप मेरे ही साइड लेंगे। और फिर आज के श्लोक में कह रहे हैं कि मैं भी आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं और लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करना चाहती हैं, और आप लक्ष्मी जी का तिरस्कार करके मुझे मेरा उत्साह बनाएंगे, इसीलिए बड़े बड़े साधु पुरुष भी आपकी भक्ति करते हैं क्योंकि भक्ति के द्वारा ही संसार के मोह से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों के शरण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। तो मुक्त जीव भी हैं वो भी आपके चरण कमलों से आकर्षित हो जाते हैं। अगर मुक्त जीव मुक्ति पाकर अपने आप में संतुष्ट होते, परम संतुष्टि गम को प्राप्त हो गई होती, तो फिर वे आपके चरण कमलों से क्यों आकर्षित होते। इसका मतलब आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही उच्चतम स्थिति है, परम सिद्धि है, और यही मुझे चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हम सब भगवान के विभिन्न अंश हैं और भगवान से मुख होकर इस भौतिक जगत में हम सड़ रहे हैं, तो हर जीव तरह तरह से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसको आनंद नहीं मिल रहा। तो अगर जो मुक्ति, सही ढंग से अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का केवल यह अर्थ नहीं है कि दुखों से हमें निवारण मिल जाए, मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा अन्यथ रूपेण स्वरूपे व्यवस्थिता, कि हम सभी तरह के रूपों को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना। और स्वरूप क्या है, जीव का क्या स्वरूप है, जीवेर स्वरूपे होवे कृष्ण नित्य दास। पांच तरह की मुक्ति बताई गई है, सायुज्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सृष्टि। सायुज्य मुक्ति में व्यक्ति भगवान में लीन होता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होता है, सामीप्य में भगवान के समीप आता है, सालोक्य में भगवान के लोक को प्राप्त करता है, सारूप्य में भगवान जैसा रूप प्राप्त करता है, और सृष्टि में भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करता है। लेकिन जीव का ये स्वरूप नहीं है, जीवेर स्वरूप होवे कृष्ण नित्य दास। तो जो भगवान का भक्त है उसको किसी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि मुक्ति और मुक्ति भक्त के द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े हैं। जिस तरह से कहीं से एक महारानी निकलती है तो महारानी के पीछे पीछे उसकी दासियां चलती हैं, इसी ढंग से भक्त के पीछे पीछे मुक्ति और मुक्ति हाथ जोड़कर चलती है। तो भक्त की कोई इच्छा नहीं है कि उसको किसी भी तरह की मुक्ति चाहिए, वो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है, चाहे वो इस जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, वो इस जगत में रहते हुए भी नित्य मुक्त हो सकता है। तो भक्त को मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जिसे कहा गया है एक भ्रम, भ्रम में आकर जीव ये सोचता है कि वो कृष्ण से विमुख होकर आनंद प्राप्त कर सकता है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम का अर्थ क्या है, जो कि नहीं है, इल्यूजन, एक रस्सी सांप की तरह लग रही है लेकिन वो सांप नहीं है। इसी ढंग से सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं कृष्ण से विमुख होकर आनंद प्राप्त कर सकता हूं, जो कि नहीं है। उपनिषदों में बताया गया है रसो वही साध, कि कृष्ण ही आनंद है। और हमारी मूर्खता देखिए बद्ध जीवों की, कृष्ण ही आनंद है, आनंद को छोड़कर आनंद ढूंढ रहे हैं। तो ये भ्रम हो गया ना, कृष्ण ही आनंद है, बोले कृष्ण नहीं चाहिए, आनंद को छोड़कर आनंद चाहिए, कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। इसलिए भौतिक जगत में मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कष्ट, हर एक योनि में मन और इंद्रियों के साथ जीव संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है रात दिन, शायद आनंद मिल जाए, शायद अगले जीवन में या अगले कदम में सुख मिल जाए, नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा भ्रम है। और इस भौतिक जगत में जो आनंद मिलता भी है, तो विद्यापति कवि हैं वो कहते हैं वो आनंद किसके समान है, रेगिस्तान में एक बूंद के समान। हमारी जो पिपासा है, हमारी जो प्यास है, वो रेगिस्तान के समान है। आनंद के लिए हम तरस रहे हैं और कैसा आनंद मिल रहा है, एक बूंद के समान, तो कैसे संतुष्टि मिलेगी, मिल नहीं सकती। फिर कोई चीज सोचते हैं कि ठीक है इस पृथ्वी में आनंद नहीं है, शायद ऊंचे लोकों में आनंद हो, स्वर्ग का आनंद हो, स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं, शोभ रस, सुंदर शरीर, स्वास्थ्य अच्छा, बुढ़ापा नहीं है, बहुत आनंद है वहां पर। तो मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि जो लोग स्वर्ग की भी अभिलाषा करते हैं, स्वर्ग के आनंद के पीछे भागते हैं, उनको बताया गया है प्रबूढ़ा। प्रबूढ़ा मतलब विशेष तरह के मूर्ख, विशेष, अपनी अलग कैटेगरी रखी प्रबूढ़ा। तो मुंडक उपनिषद में जब स्वर्ग की इच्छा करने वालों को प्रबूढ़ा बताया गया है, स्वर्ग का सुख पृथ्वी के सुख से कई गुना अधिक है, तो इस पृथ्वी में जो सुख चाहते हैं उनको क्या कहना चाहिए, प्रा 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 बूढ़ा, यानी कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ फूल है। प्रभुपाद ने कहा ना सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ फूल है इस परम 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 मूर्ख। स्वर्ग के सुख वालों की इच्छा को उनको बोलते हैं प्रा बूढ़ा, तो क्या है हमारी हालत बताइए, कोई तुलना ही नहीं कर सकते स्वर्ग के सुंदरता को और इस पृथ्वी की सुंदरता से, कोई तुलना ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारी मूर्खता देखिए, हमारी क्या, एक चींटी, एक बल में बड़ा कीड़ा, वो भी अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझता है। सोचिए, एक मल में पड़ा हुआ कीड़ा भी सोचता है कि हाँ मैं कुछ हूं, मैं भी भोक्ता हूं, एक मच्छर, एक कीटाणु, वो भी अपने आप को भोक्ता समझता है। कितना बड़ा भ्रम है ये, कितना बड़ा इल्यूजन है। तो आनंद से मुख मोड़कर हमें आनंद कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। साधारण जीवन में किसी व्यक्ति को बोलिए कि भगवान के साथ ही आनंद मिल सकता है, भगवान ही आनंद है, तो मजाक उड़ाएगा, क्योंकि हम भी अपने जीवन को देख सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले। बद्ध जी ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की भक्ति में आनंद है, वो कहेगा कि भगवान तो मेरे आनंद में बाधा है। ये विचार होता है कि आनंद का है ई ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, ये भगवान बीच में कहां से आ गए। अगर जबरदस्ती मंदिर जाना पड़े या भगवान का नाम लेना पड़े तो मुसीबत लगती है, तो भगवान लगता है हमारे आनंद की सबसे बड़ी बाधा है। देखो ये हैं विकर्मी लोग, तरह तरह के पाप कार्यों में लगे रहेंगे और सोचते हैं कि आनंद का और भगवान का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, यानी कि आनंद ही भगवान है, और सोचते हैं कि आनंद और भगवान का कोई संबंध ही नहीं है, हम अपने आप आनंद हमें प्राप्त करने दो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कोई मतलब ही नहीं भगवान का। तो ये कहलाते हैं विकर्मी लोग। इससे ऊपर आते हैं कर्मकांडी लोग, जो थोड़ा बहुत भगवान के अस्तित्व को मानना शुरू कर देते हैं और भगवान के पास जाएंगे वो भी कैसी प्रार्थना करेंगे। देखिए भगवान के पास जाकर ही ये प्रार्थना करेंगे कि हम आपसे विमुख होकर और आनंद प्राप्त कर सकें। देखिए ना कितना बड़ा भ्रम चल रहा है। विकर्मी है बोले आप भगवान को कोई मतलब ही नहीं आनंद से, कर्मकांडी व्यक्ति है कि कुछ कर्मकांड करूंगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष धन मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, तो भगवान के पास ही जा रहा है और ये प्रार्थना कर रहा है कि ये भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आपसे विमुख होकर मैं और आनंद प्राप्त करूं। तो ये है कर्मकांडी व्यक्ति। जब उससे भी उसको आनंद नहीं मिलता और पूरी तरह से कुंठित हो जाता है, फिर वो कहता है कि मैं ही भगवान हूं। कितने बड़े भ्रम चल रहे हैं। देखिए श्री प्रभुपाद कहते थे कि भगवान में लीन होना जो मायावाद है, लास्ट स्नेयर ऑफ माया, ये माया का आखिरी चाल है, लास्ट स्नेयर, माया की चरम सीमा है। तो वो कहता है कि ठीक है फिर मैं ही भगवान हूं, और कुछ तो आनंद मिल ही नहीं, मैं ही भगवान। तो उसको बोला गया है ज्ञानी, और ऐसे ज्ञानी लोग कर्म संन्यास, हर तरह के कर्म को त्याग देते हैं। तो श्रील भक्ति सरण सभी ठाकुर महाराज कहते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी है वो कर्म से संन्यास नहीं लेते, वस्तुतः वो भक्ति से संन्यास ले लेते हैं। ये भी कैसा संन्यास, भक्ति से ही संन्यास ले लिया, जबकि असली संन्यास का अर्थ है ससन्यासी च योगी च, भगवान गीता के छठे अध्याय में बता रहे हैं। संन्यासी का अर्थ है भक्त योगी, जो हर चीज को कृष्ण से जोड़े। सन्यासी का अर्थ केवल त्यागना नहीं है, भक्त ना भोगी है ना त्यागी है। भक्त हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो जब ऐसा ज्ञानी भी उसको भी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि बताया गया है भागवतम में पतंती अधः, अगर वो कोई जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो जाएगा वो नीचे गिरेगा, क्योंकि उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। आत्मा की प्रकृति सक्रियता, जब वो सक्रिय नहीं रहेगी तो उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा। लेकिन बताया गया है कि ऐसा ज्ञानी परिपक्व अवस्था में वो जान जाएगा कि कृष्ण ही सब कुछ है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो शिला बलदेव विद्याभूषण जी अपने टीका में बताते हैं श्लोक के कि इससे पहले भगवान कह चुके हैं चतुर कौन सा श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखा आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि चार तरह की पुण्य आत्माएं मेरी शरण में आती हैं। आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी, आर्थो मतलब की जो कि धन की इच्छा है, जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्थो यानी दुखी, जिज्ञासु और धन की इच्छा वाले, और ज्ञानी, ये चार तरह के भक्त मेरी शरण में आते हैं। तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते बहुनाम जन्म नाम अंते, ये बाकी के तीन भक्तों के लिए बताया गया है, आर्थो जिज्ञासी और अर्थार्थी। कि बहुत जन्मों के बाद भक्ति करते 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 इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सद्दुर्लभा, कि वासुदेव ही सब कुछ है, और फिर वो उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो इस तरह के जो ज्ञानी हैं जो कि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वो इस भौतिक जगत के भ्रम से छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि फिर वापिस उनको गिरना पड़ेगा। देखा जाता है कि जो मायावादी सन्यासी हैं वो जब नीचे गिरते हैं वो फिर तरह तरह के सामाजिक सुधार कार्य करते हैं, हॉस्पिटल खोलेंगे, अनाथालय खोलेंगे, ये सब कार्य करेंगे, तो वो फिर से भौतिक जगत के बचने में फंस जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी इतना सुंदर उदाहरण देते हैं इन ज्ञानियों की स्थिति को समझाने के लिए कि भगवान अपना विस्तार जीवों में करते हैं ताकि प्रत्येक जीव भगवान को आनंद दे सके। जिस तरह से एक स्त्री और पुरुष संतान की उत्पत्ति करते हैं कि संतान उनको आनंद दे सके, इसी ढंग से भगवान अपना विस्तार करते हैं कि जीव भगवान को आनंद दे सके। जब कुछ जीव जब बाहर आते हैं और इस भौतिक जगत में कुंठित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो फिर वो दोबारा से भगवान से कह रहे हैं हम आपने लीन होना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि वैसी स्थिति हो गई कि बच्चा माँ के पेट से बाहर आया और देखा बाहर इतनी भयभीत स्थिति है, तो दोबारा माँ के पेट में घुसना चाहता है। माँ ने उसको पैदा किया था कि वो उसको आनंद दे, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होकर दुखी होकर ये प्रार्थना करा कि मैं दोबारा से माँ के पेट में घुस जाऊं, तो माँ को अच्छा लगेगा ये? निश्चित रूप से नहीं। उसी ढंग से जो ज्ञानी ब्रह्मलीन होना चाहते हैं उनकी ये स्थिति है कि भगवान ने उनको बनाया, भगवान हमारा जो अस्तित्व इसीलिए है कि हम भगवान को आनंद दे सके, लेकिन ऐसे मूर्ख जिन कह रहे हैं नहीं हमें आपके आनंद से कोई मतलब नहीं है, वापस ले लो, हम दोबारा आपके शरीर में जाना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो ऐसे जीवों को मूर्ख बताया गया है, निश्चित रूप से उनका पतन होगा। लेकिन जो भक्ति का आनंद है वो परम है, उससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्त के छह लक्षणों में से एक लक्षण कौन सा है जिससे कि मोक्ष से उसकी तुलना की गई है? मोक्ष के आनंद से भक्ति के आनंद की तुलना करते हुए कौन सा लक्षण? मोक्ष लघुता है। जो मोक्ष का आनंद है वो तुच्छ है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म में लीन होने के आनंद को करोड़ों गुणा गुणा कर दिया जाए तब भी वो भक्ति के सागर की एक बूंद के समान भी नहीं है। करोड़ों गुणा गुणा कर दिया जाए तो भी भक्ति के में आनंद मिलने वाले एक बूंद के समान भी नहीं है। प्रहलाद महाराज जी जब नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं हरि भक्त सुखदेव में, तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं भक्ति के सागर में तैर रहा हूं, और इस ये जो आनंद है उसकी तुलना में ब्रह्मानंद जो ब्रह्म में लीन होने का आनंद है वो गोखुर के समान है। यानी कि भक्ति के आनंद की तुलना की गई है एक सागर से, और जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के आनंद की तुलना की गई है गोखुर, वो गाय के बछड़े के पांव के नीचे जो जल इकट्ठा हो जाता है उससे। वैसे तो भागवतम में ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की है उसमें दूसरी बात ये भी है भवाम बुद्धि वक्स पदम 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 कि जो आपके चरणों की शरण ग्रहण करता है उसके लिए भवाम बुद्धि ये भौतिक सागर जो समुद्र के समान है वो गोखुर के समान बन जाता है। और यहाँ प्रहलाद महाराज जी ऐसे तुलना कर रहे हैं कि जो आपकी भक्ति में डूबता है उसमें जो भक्ति का सागर है उसके सामने ये ब्रह्मानंद है वो गोखुर के समान। कितनी सुंदर तुलना है। इसी तरह से श्रील स्वामी जी अपने बाबा दीपिका टीका में बताते हैं कि भक्ति से मिलने वाले आनंद के समान के सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष और मुक्ति का आनंद ऐसा आनंद है जैसे कि गली में पड़े हुए घास का तिनका देखेंगे भी घास का तिनका है। भक्ति का आनंद इतना परम बताया गया है। नारद पंचरात्र में बताया गया है कि जो भक्ति में थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है थोड़ी सी भी वो बाकी किसी और जगह से जो आनंद मिलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति से आनंद उनकी कोई परवाह ही नहीं करता। कोई परवाह नहीं है जिसने भक्ति में थोड़ी सी भी प्रगति कर ली है। और ये सब अपने हम जीवन में देख सकते हैं कि हम जैसे भक्ति में जुड़ते हैं जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करते हैं अपने आप ही हमारे अंदर अनासक्ति हो जाती है। जिन विषयों से हमारी आसक्ति होती थी जो विषय जिनमें हम लीन होते थे बिल्कुल विषयों में अपने आप ही अनासक्ति शुरू हो जाती है। अपने आप मदिरापान धूम्रपान और तरह तरह की आदतें छूट जाती है। तो भक्ति में थोड़ी सी प्रगति भी होती है हम दूसरे तरह के आनंद की परवाह ही नहीं करते। जैसे कि मनमन आता है गौर लीला में एक भक्त थे खोला बेचा श्रीधर। खोला बेचा श्रीधर बहुत ही बौद्ध विषय से दरिद्र थे। केले के पत्तों का व्यापार करते थे मुश्किल से दो आने कमाते थे और आधी कमाई वो गंगा की पूजा में लगा देते थे। तो निमाई मंडित प्रतिदिन उनके पास आते थे उनके सामान को चुरा लेते थे उनसे बार्गेनिंग करते थे। तो फिर भी खोला बचा श्रीधर हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर जोर से अपनी झोंपड़ी में वो कीर्तन करते रहते थे। उनकी झोंपड़ी में छत में कई सुराख थे जैसे बारिश हो रही है पानी बरसता रहता था और उनकी धोती में कई सुराख थे और वो हमेशा रात भर कीर्तन करते थे। तो उनके पड़ोसी सोचते थे भूखा है इसको भूख लगी हुई है दरिद्र है नींद नहीं आ रही तो खुद में नहीं सो रहा हमें भी नहीं सोना दे। लेकिन ये स्थिति नहीं थी उनको इतना आनंद था कोई परवाह ही नहीं थी उनको कि छत टूटी हुई है धोती फटी हुई है कुछ खाने को नहीं है कोई समस्या नहीं। तो जब अष्टवाहरी लीला में शिवा सांगर में महाप्रभु भक्तों को अपना स्वरूप दिखा रहे थे तो उन्होंने खुला वजह श्रीधर को बुलवाया। तो भक्तों ने पूछा कैसे पहचाने उसको तो बोले रात्रि के समय जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जहां पे जोर जोर से आवाज आ रही हो कीर्तन की वहीं चले जाना। तो भक्त लोग गए और खुला वजह श्रीधर को देखा आनंद में कीर्तन कर रहे हैं। बोला आपको निमाई पंडित ने बुलाया महाप्रभु ने बुलाया है। सुनते ही वो बेहोश हो गए और बेहोशी के वत्सल में उनको उठाकर भक्त लोग ले आए और महाप्रभु के सामने रख दिया। महाप्रभु ने उनका स्पर्श किया तो उनकी चेतना वापस आई और फिर महाप्रभु ने उनको त्रिभक्त रूप दिखाया श्याम सुंदर बंसरी पकड़े हुए सुंदर रूप दिखाया। और फिर महाप्रभु ने कहा कि बोलो खोला बेचा श्रीधर क्या चाहिए तुम्हें मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा तुम इतने दरिद्र हो तुम्हें मैं हर तरह का भोग दूंगा तुम्हें स्वर्ग का सुख दूंगा तुम्हें चाहिए तो मोक्ष भी दे दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा खोला श्रीधर ने कहा ना मुझे कोई भौतिक सुख चाहिए ना स्वर्ग का सुख चाहिए ना ही मुझे मोक्ष चाहिए मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जन्मों जन्मों तक आप मेरे पास निमाई पंडित बन के आते रहिए और इसी तरह से मुझसे केले चुरा के खाते रहे। देखिए ये है भगवान नहीं चाहिए कोई सुख कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए कोई मोक्ष नहीं चाहिए बस मैं आपके सुंदर रूप का दर्शन करता रहूं और आप इसी तरह से आकर मेरे सामने आइए और मेरे से केले चुरा के भागते रहे बस यही मुझे चाहिए। तो इसका मतलब आप कल्पना कीजिए खोला हुआ श्रीधर फटी हुई धोती टूटा हुआ मकान दो आने की आए आधी आए गंगा की पूजा में क्या उनको आनंद मिल रहा होगा बताइए कितना आनंद मिल रहा होगा कि स्वयं भगवान कह रहे हैं छोड़ो अपनी सारी दरिद्रता दूर कर देते हैं स्वर्ग का सुख दे देते हैं मोक्ष दे देते हैं बोले नहीं चाहिए, मैं तो यही अच्छा लगता है कि आप सुंदर निमाई पंडित बालक के रूप में मेरे पास आओ और मुझसे गेले चुड़ के भागते रहो। तो ये है भक्तों की इच्छा। और इसी अपने सुंदर रूप से आकृष्ट करने के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। भागवतम के 11 स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान जब यहां आते हैं तो अपनी सुंदरता से सबकी आंखों को हर लेते हैं, और जब भगवान बोलते हैं इतनी मधुर वाणी निकलती है कि सबके सब उनकी मधुर वाणी को सुनकर गूंगे हो जाते हैं, और उनके काम भी भगवान हर लेते हैं, वो और कुछ सुनना नहीं चाहते। और भगवान जब यहां धराधाम पे आकर चलते हैं तो उनके पद चिन्हों को देखकर सबके सब अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो ये है भगवान के आने का अभिप्राय कि भगवान कृष्ण कथा की स्थापना करें और प्रत्येक बद्ध जीव को अपने प्रति आकर्षित करें। देखिए प्रत्येक जीव सच्चित आनंद है, हम हर कोई सुंदरता देखना चाहता है, हर कोई आनंद चाहता है, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान सुंदरता का आनंद के सागर है, तो हम अपने आप हमें उसका अंश हमें मिल जाता है, अपने अपना हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं कि हम सुंदरता का दर्शन करें और आनंद को प्राप्त करें, केवल कृष्ण की सेवा से ये इच्छा पूरी हो जाएगी। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि ये भगवान की असीम कृपा है कि भगवान यहां आके मानव रूप में आते हैं और मानवीय कार्य करते हैं, मानव की सराहन मनुष्य की तरह, और फिर लीलाएं करते हैं ताकि बद्ध जीव उनके प्रति आकर्षित हो जाए और उनके प्रति आकर्षित होकर वो भगवान का गुणगान सुने। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी भक्तों की भगवान की लीला सुनने में रुचि उत्पन्न होती है, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कह रहे हैं। और जब रुचि इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है फिर भगवान ऐसे भक्तों को मौका देते हैं अपनी लीला में सम्मिलित होने का। किसी भी ब्रह्मांड में अगर भगवान लीला कर रहे हैं तो ऐसे भक्त जिनकी भगवान की लीलाओं से श्रवण में रुचि उत्पन्न हो जाती है, भगवान को मौका देते हैं कि वो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो सके, और जब भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होकर फिर अंततः भगवान उनको अपने साथ गोलोक धाम ले जाते हैं। तो ये भगवान के यहां लीला करने का अभिप्राय कि बद्ध जीव उनके प्रति आकर्षित हो। श्रील विष्णुचरण ठाकुर बहुत सुंदर बात कहते हैं श्लोक के तात्पर्य में कि ये भगवान की क्या कृपा है। देखिए भगवान ने अपनी सुंदरता से सबकी आंखें हर ली, सबकी जीवा हर ली, सबके कान हर लिए, यानी कि अंधा बना दिया, गूंगा बना दिया, बहरा बना दिया, पंगु बना दिया। तो ये भगवान क्या है, ये कोई कृपा कर रहे हैं? बोले वो चोर हैं, चोरी कर ली, हमारी आंखें चुरा ली, कर्म चुरा लिए, जीवा चुरा ली, तो अंधा गूंगा बहरा बना दिया, ये कैसी कृपा भगवान की? तो इससे मालूम चलता है कि भगवान कितने सुंदर हैं। और इसीलिए हम सब जीवों का अस्तित्व ही इसीलिए है कि हम भगवान के असंख्य गुणों का गुणगान करें, उनका श्रवण करें, यही हमारे जीवन का अस्तित्व है। हम आए इसीलिए है कि हम भगवान के असंख्य गुणों का गुणगान करें और श्रवण करें, और कोई उद्देश्य नहीं है। श्री राजीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के लीलाओं का, वचनों का श्रवण करने का वही लाभ प्राप्त होगा, 5000 वर्ष बाद भी वही लाभ प्राप्त होगा जो कि उस समय भगवान की उपस्थिति में जो जीव थे उनको प्राप्त हुआ था, वही लाभ हमें 5000 वर्ष भी प्राप्त होगा अगर हम भगवान की लीलाओं का, उनके वचनों का श्रवण कीर्तन करते हैं। 5000 वर्ष के बाद क्या, लाखों लाखों साल तक वही लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और यही पृथु महाराज कह रहे हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि आपकी महिमा का श्रवण करता रहूं और अपने मन को आपके चरण कमलों में लगाऊं, यही जीवन की परम सिद्धि है, बस यही जीवन की परम सिद्धि है। भागवतम के पहले स्कंद के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत धाम जाने की केवल एक ही योग्यता है। कोई बता सकता है क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य बता रहे हैं? डिजायर टू भगवत धाम जाने की एक ही योग्यता है कि भगवान की कथाओं में श्रवण की रुचि, जब तक कृष्ण कथा में श्रवण की रुचि नहीं है तो हम भगवत धाम जाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि भगवत धाम जाके आपको और कुछ तो सुनने को मिलेगा नहीं। क्रिकेट स्कोर, शेयर का क्या प्राइस है, फिल्म स्टारों के गुणगान, ये तो सुनने को मिलेगा ही नहीं। केवल कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वहां पे सारे न्यूज़पेपर, सारे एफएम, सारे चैनल सब कृष्ण 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 और कुछ नहीं। तो वहां जाके हम बोलोगे क्या हर जगह कृष्ण कृष्ण चल रहा है, तो फिर नीचे आना पड़ेगा, योग्य नहीं, एंटर ही नहीं कर सकते। कृष्ण कथा में श्रवण करने की रुचि, यही भगवत धाम जाने की योग्यता है बस, और कोई योग्यता है ही नहीं। और मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, ये कर्म इसीलिए मिले हैं हमें, तो दो कान भी हमसे नहीं संभलते, अभी तो महाराज लाखों कान मांग रहे हैं, इसीलिए मिले हैं कि हम कृष्ण कथा का श्रवण कर सके। और फिर उसके अगले श्लोक में बताया गया है कि ये रुचि कैसे उत्पन्न होगी, ये रुचि उत्पन्न होगी शुद्ध भक्तों की सेवा करके। जब वैष्णव सेवा करेंगे तब ये रुचि उत्पन्न होगी, और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। जब वैष्णवों की सेवा करते हैं तब ये श्रवण करने की रुचि उत्पन्न होती है। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि किसी ढंग से हमारा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आकर्षण हो, भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण हो, और ये हमारे को पूर्ण रूप से हमें संतुष्ट होना चाहिए कि इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। देखिए यहां पर पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जो कि वर्णाश्रम धर्म की चिंता गई है कि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और संत सिद्धि हरितोषण भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, लेकिन हम लोग तो सर्वोत्तम यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ नाम जप यज्ञोऽस्मि, भगवान गीता के 10वें अध्याय में बता रहे हैं कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं। तो देखिए हम हमारा भाग्य कितना ऊंचा भाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम सर्वोत्तम यज्ञ कर पा रहे हैं। जैसे दिन प्रभु जी बता रहे थे कि हम सबसे, जिसे कहते हैं प्रमाणिक उच्च संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी की शरण प्राप्त करके, प्रमाणिक गुरु की शरण में आकर सर्वोत्तम यज्ञ पद्धति की हमने शरण ग्रहण की हुई है। और पृथु महाराज की यज्ञ में भगवान प्रकट होते हैं गरुड़ जी पे बैठकर, और दयावश अपने पांव पृथ्वी पर रखते हैं। लेकिन इस यज्ञ की सुंदरता को देखिए, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते, राधा रानी के साथ आते हैं, और राधा रानी के साथ आके पृथ्वी पांव नहीं रखते, हमारे जीवा पे नाचते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे यज्ञ को कर सकते हैं कि हम सीधा आह्वान करें राधा और कृष्ण का, और वो हमारे जीवा पे नाचना शुरू कर देंगे। सोच भी नहीं सकते कि हम जैसे बद्ध जीव, जिनकी कोई योग्यता नहीं है, वो ऐसा बड़ा यज्ञ कर सकते हैं कि राधा कृष्ण को बुलाएं अपने जीवा पे नाचने के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। और जब हम राधा कृष्ण को बुला रहे हैं और राधा कृष्ण नाच रहे हैं हमारे जीवा पे, फिर हमें क्या मांगना चाहिए? फिर ये नहीं मांगना चाहिए कि मेरा धंधा चल जाए, मेरे विवाह हो जाए, ये सब हो जाए। ना ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहत की त्वये। फिर तुम महाराज कुछ और नहीं मांग रहे कि मेरा राज्य बढ़ जाए, मुझे और सुख प्राप्त हो जाए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों का स्मरण कर सकूं, आपकी कथा का श्रवण कर सकूं शुद्ध भक्तों से, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसी ढंग से भवतात भक्ति रहेतु की त्वयि, मुझे केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना जन्म ना सुंदर स्त्री ना शिष्य ना अलंकारिक भाषा, कुछ नहीं, केवल आपकी अहेतु की भक्ति बस। क्योंकि इतना बड़ा जब हम यज्ञ कर रहे हैं, सर्वोत्तम यज्ञ कर रहे हैं, स्वयं राधा कृष्ण हमारे जीवा पे नाच रहे हैं, इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा? कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। नहीं, हम लोग क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, सोच भी नहीं सकते कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है। फिर भी भक्ति में जुड़ने के बाद, दीक्षा लेने के बाद भी इच्छाएं बनी रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई नया ऑफिस खोलता है, भक्त है, तो बोले हाँ प्रभु जी कुछ, या गृह प्रवेश कराना है, तो बोले ठीक है आ जाएंगे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन? कोई यज्ञ वगैरह नहीं करेंगे, स्वाहा स्वाहा लगे कुछ हुआ है, विश्वास ही नहीं है कि संकीर्तन यज्ञ है। कितना सबसे उत्तम यज्ञ, कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है, विश्वास नहीं कि वो कुछ होना चाहिए, कुछ कर्म कांड भी होना चाहिए कि बिजनेस नहीं चल रहा। लोग पूछते हैं और क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए इसके अलावा, और क्या करना है, और करना क्या है इसके अलावा, क्या करना है बताइए इसके अलावा, और क्या करना है, क्या चाहिए। हरे कृष्ण नामक का जब तक नहीं वो तो कर ही रहे, और क्या करना है, और क्या करने की आवश्यकता ही नहीं है, और क्या करना है, यही कर पा रहे हो, सब कुछ है। इसी के लिए भगवान को धन्यवाद करो, अरे भगवान में क्या स्थिति तो देखो अपनी, क्या थे हम, काम क्रोध लोभ से भरे हुए कामुक जीव, अभी भी तरह तरह की काम वासनाएं, वो इतना बड़ा यज्ञ कर पा रहे हैं जिससे राधा कृष्ण हमारे जीवा पे नाचने को तैयार है। कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति है हमारे, भगवान कितने कृपालु है, कितने कृपालु है भगवान, कितनी बड़ी दया की है, स्वयं कृष्ण आ रहे हैं हमारे सामने। यहां पृथु महाराज की आंखों में आंसू आ गए, बोल नहीं पा रहे, हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है कि हम लोग इतने कठोर हृदय, पत्थर हृदय, चट्टान जैसा हृदय, ठोस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंसू क्या सोस होकर नींद में किसी ढंग से घिसट घिसट कर माला पूरी करते हैं, चलो खत्म हो जाए, क्या कठोर हृदय। बताया गया जब तक हरे कृष्ण का महामंत्र का जप कर रहे हैं और आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं, जप करना बेकार है, जप भी नहीं है। मतलब कि हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हमको मौका मिल गया। कली काले नाम अभी कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतरित हो रहे हैं जीवा पे, नाच रहे मेरे सामने उपस्थित हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बैठे सोचिए जरा, मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। प्रमाणिक गुरु की शरण मिल गई, हरे कृष्ण नामक का जप मिल गया, गोलक धाम जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं है, वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। और फिर तरह तरह की इच्छाएं जागृत हो रही है कि कुछ और है, तो अवलोकन करना चाहिए हमें अपना, और जानना चाहिए कि बहुत ऊंची स्थिति में हम वास्तव में देखा जाए, जस्ट क्लोज टू एटर्निटी, हम बिल्कुल गोलोक धाम जाने के द्वार पे ही खड़े हैं, समझ लीजिए। प्रमाणिक गुरु मिल गए हैं, महामंत्र मिल गए, बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं। बस सावधानी पूर्वक इस यज्ञ को करें, सावधानी पूर्वक, और एक आदर्श व्यवहार रखें, जैसे पृथ्वी महाराज ने अपना आदर्श व्यवहार रखा। पृथ्वी महाराज ने लड़ाई नहीं कर ली इंद्र से, और ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया क्योंकि मैं हूं आपका कहना, 99 यज्ञ कर लिए, पता है कितना संघर्ष किया मैंने, और आप तो अभी बंद कर दो, आपका क्या, आप तो हमेशा यही बोलते हैं, है ना, यही कहा जाता है ना कि जो लोग ज्यादा कहना माने उसी को दबाया जाता है, मुझे ही दबा रहे हो आप, इसको तो कुछ कह नहीं रहे, इतनी शरारतें की इसने इंद्र ने, इसको कुछ नहीं कह रहे, मुझे ही दबाओगे, मैं क्यों करूं, यही होता है ना भक्तों में बोला जाता है, आप मैं क्यों मानूं इसको समझाओ, दूसरों से तुलना करते रहते हैं अपनी। पृथु महाराज ने अपना आदर्श व्यवहार दिखाया, अपने आचार्य की बात को माना और ध्यान पूर्वक सब कुछ कार्य किया, उसी ढंग से भगवान से प्रसन्न हो गए। इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सुंदर अवसर है, मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, मनुष्य जीवन प्राप्त होने का प्रमाण एक गुरु मिल गए, महामंत्र मिल गया, यज्ञ हम कर रहे हैं, स्वयं भगवान तैयार है हमें जाने के लिए, तो फिर क्यों फालतू की इच्छाएं रखें, क्यों बेकार व्यवहार करें, अच्छा आदर्श व्यवहार करें, बेकार की इच्छाओं से अपनी मुक्ति करें। अन्य अभिलाषिता शून्य, शून्य कम है, अन्य अभिलाषिता शून्य, और क्या अभिलाषा होनी चाहिए, और अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरि बो सदा युगल रूप राशी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी, नमो नमः। ये अभिलाषा करनी चाहिए और ये हमारा हक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ये हम किसी तरह राइट, क्योंकि वही भगवान कह रहे हैं शास्त्रों में क्या बताया गया, श्रवंते विश्व अमृतस्य पुत्र के अमृत पत्रो सुनो आये धामानी दिव्यानी तुष्टो, कि तुम इस जगत के नहीं हो, तुम दिव्य जगत के हो, सुनो अमृत के पुत्रो सुनो, जागो अब, तो सुनना है हमने इस बात को, ये हमारा हक है कि नयने हरि को सदा युगल रूप राशि, हमारे सामने सीधा राधा कृष्ण की युगल रूप हो, ये हमारा हक है, वी डिजर्व दिस, अपने आप को हमें काबिल बनाना है इसका, और यही अभिलाषा लानी है, और यह अभिलाषा नहीं हो रही तो बार बार प्रार्थना करनी कि यह अभिलाषा उत्पन्न हो, बार बार यही प्रार्थना करनी है और बाकी इच्छाओं को जीरो कर देना है, शून्य। ध्रुव महाराज कहते हैं जब उनके सामने भगवान प्रकट हुए, वो बोलते हैं कि नूनम विमष्ट मतया अर्चंती कलभद्रो कुणाक हो गया। नूनम विमष्ट मतया कि ऐसे लोगों की मति निश्चित रूप से मारी गई है, नष्ट हो गई है। अर्चंती कलभद्रो कुणाक हो गया कि वो अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, कुणाक हो गया। कुणाक मतलब कि इस मल मूत्र वाले शरीर से भोग प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं। नूनम विमष्ट मतया ऐसे लोगों की मति निश्चित रूप से मारी गई है। वो कल्प वृक्ष है, वो आपको सब कुछ दे सकते हैं और उनसे हम ऐसे भोग मांग रहे हैं कुणा पे, ये मलमूत्र के शरीर के लिए भोग मांग रहे हैं, ये मलमूत्र का शरीर इसके लिए भोग मांग रहे हैं, जो कि जला दिया जाएगा, जो मल बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, उसके लिए हम भोग मांग रहे हैं। नूनम विमष्ट मतया ऐसे लोगों की मति निश्चित रूप से मारी गई है। तो इसीलिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध भक्ति करें, शुद्ध भक्ति इच्छा को जागृत करें। तो इच्छा जागृत होती है संगात संजाय टे का, ऐसे भक्तों का हम संग करें, भक्तों की सेवा करें, हमारे अंदर भी भगवान की कथाओं का श्रवण करने की रुचि उत्पन्न हो। और अगर दूसरी इच्छाएं हैं भी तो कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करें। आपको मालूम है जब नरसिंह भगवान जी प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हृदय के अंदर के डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, हृदय के अंतिम अंत 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 अंतकरण तक भी देश मात भी भौतिक इच्छा ना रहे। अगर हैं भी भौतिक इच्छाएं तो भी हम भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कोई भौतिक इच्छा ना रहे, ये भगवान से प्रार्थना करें। वो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय के अंतःकरण तक कोई भौतिक इच्छा ना रहे। क्योंकि अगर भौतिक इच्छाएं रहती हैं तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी साधना, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां सबकी सब दूषित हो जाती है, सबकी सब मति मारी जाती है। वो बताया गया कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से विमुक्त है उसको भगवान का ऐश्वर्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, तुम मांगने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही मिल जाएगा। तो इस तरह से पृथु महाराज की तरह हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि आपके चरण कमलों में हमारी रुचि उत्पन्न हो, आपके श्रवण में, कथाओं के श्रवण में हमारी रुचि उत्पन्न हो, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जो यज्ञ हमें दिया गया है जप यज्ञ, इस जप यज्ञ को हम बहुत ही सावधानी से करें, बहुत ही सावधानी से, और कोई उपाय नहीं है हमारे लिए। कितना सरल है, इसको हम बहुत ही सावधानी से हो सके सुबह उठकर जल्दी भक्तों के संग में एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक इसका उच्चारण करें, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हमारे पूरे दिन में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम मनन करते हैं, हमारे यही लक्ष्य होना चाहिए कि यज्ञ हमारा अच्छा हो। पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे थे तो उनका यही लक्ष्य था कि मेरा यज्ञ अच्छा हो जाए, इसमें कोई बाधा ना आए। इसी ढंग से हमारे पूरे जीवन का, अपने हमारे जीवन प्रणाली, व्यवसाय, जो भी हम मैनेज कर रहे हैं, अंतिम उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा यज्ञ अच्छा हो। कोई भी वस्तु इस यज्ञ में बाधा डाल दे तो उसको हटा देना चाहिए, ये यज्ञ अच्छा होना चाहिए हमारा। तो इसके लिए पूरा हमें तैयार रहना चाहिए, इसके लिए मैं जो भी करना मैं करने को तैयार हूं, जो भी तपस्या करनी है करनी, तो यही यज्ञ और कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ का अर्थ है सेतु, ब्रिज, जो मुझे भगवान से जोड़ेगा। इसी सेतु में कई रुकावटें हैं बीच में, तो कहां पहुंचेंगे भगवान तक, यही लिंक है मेरे और कृष्ण के बीच में। तो ये लिंक टूटना नहीं चाहिए, ये लिंक बना रहना चाहिए, तो हर परिस्थिति में ये यज्ञ अच्छा होना चाहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य। शिव प्रभात कहते थे आध्यात्मिक जीवन में सफलता किस पर निर्भर है, 99.9% यज्ञ, जाति यज्ञ। सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को एक प्रश्न या टिप्पणी? यस बोलिए।
जो अकेला भोगता है उनको देखे आता है, वो
बात सही है कि इंद्र को क्यों नहीं डांटा गया, इंद्र को क्यों नहीं सीधा किया गया। देखिए अगर इंद्र को डांटा जाता, सीधा किया जाता, तो पृथ्वी माता से अपना गुणगान ना हो पाता, हमको सीखने को ना मिलता कि हमें पृथ्वी माता की तरह सहनशील और विनम्र होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों का गुणगान ही करें। अन्याय को सहना सही बात है। देखिए हाँ, पृथ्वी महाराज जी अन्याय को नहीं सहन कर रहे थे और पृथ्वी महाराज उनको मानने को तैयार हो गए थे, लेकिन जब गुरु बोले कि अन्याय को सह जाओ तो फिर सह लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा सह लो, सह लो, फिर यह नहीं कहना चाहिए मैं क्यों सह लूं। गुरु थे ना, गुरु ने जो कहा वो कहा। अन्याय को तो पृथ्वी महाराज जी नहीं सह रहे थे, वो तो उनको मानने को तैयार हो गए थे। ब्रह्मा जी आए बोलो सह लो, सह लिया। दूसरा एग्जाम्पल आपने खुद दिया, अर्जुन अन्याय को सह रहे थे, भगवान का ना सहो तो नहीं सह रहे। हमारा कुछ नहीं है, जो बोलेंगे ऊपर जो हमारे सीनियर्स बोलेंगे वो करेंगे बस। अरे इसका मतलब थोड़ी अगर समझ लीजिए, आपके सामने लक्ष्मी जी आ जाए, भगवान शिव आ जाए, आपको कहना थोड़ी मानेंगे आप हमारे संप्रदाय को कोई नहीं। अपने समुदाय से प्रेम होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपराध क्यों होता है। प्रभु जी का प्रश्न है कि आप कोई नहीं चाहते कि अपराध हो, फिर भी हम अपराध कर बैठते हैं। बेसिक प्रभु जी क्या है कि हम सब नित्य बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव की कमजोरी है भोक्ता बनने की। तो जो भोक्ता बने की इतनी तीव्र इच्छा है, इतनी तीव्र इच्छा है कि सब कुछ पढ़कर सुनकर बार बार तो भोगने की इच्छा जाती नहीं है, तो इसी भोगने की इच्छा के कारण ही सारे अपराध होते हैं। तो भाई हम सेवक बनने की इच्छा करेंगे कोई अपराध नहीं है, भोक्ता की इच्छा ही अपराध करते हैं। क्या अंतर है, क्या ऐसे तो अध्ययन भी श्रवण के अंदर ही आता है। कभी जो श्री प्रभुपाद जी ने जो ये तात्पर्य दिए हैं टिकटॉक पर में बोले, श्री प्रभु जी ने कीर्तन किया है और वैसे भी कोई अध्ययन करते हैं वो श्रवण के समान ही है, लेकिन फिर भी श्रवण की ज्यादा महंगा, क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं लाइव कैसेट से सीडी से भी लाइव में करते हैं, तो भक्ति श्रेणी के अनुसार जैसे पीछे बताया जो शुद्ध भक्त होते हैं जब उनके मुख से सुनते हैं तो क्या निकलते हैं उनके मुख के साथ, भगवान के वायु के द्वारा भगवान के चरणों में जो उनके कृपा के कण है वो निकलते हैं, वो कृपा के कारण हमारे कानों में प्रवेश करते हैं और फिर हमारा शुद्ध कर्म होता है। शुद्ध भक्तों से हम साधारण सी बातें सुनते हैं तो हृदय परिवर्तन होता है, तो श्रवण का ज्यादा महत्व। लेकिन फिर भी अध्ययन को हम छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि दो घंटे श्रवण कर लिया तो अब अध्ययन नहीं करें, ऐसा अध्ययन तो करना ही करना, श्रवण ज्यादा उससे उत्तम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हृदय गौर प्रेमानंद।